समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। इसी प्रारंभिक सुविचार के साथ आइए शुरू करते हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे, जिसे लेकर आप पहुंचे हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और अनीता आनंद। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार रवि, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू अवर डेली न्यूज मैगजीन आज सवेरे, wherein we share the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 7th of May. So let's begin with the headlines first, Ravi.
जी बिल्कुल। भारतीय सशस्त्र बलों ने मध्य रात्रि में पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की है। इन ठिकानों से ही भारत के विरुद्ध आतंकी हमले करने की योजना बनाई गई थी। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि कार्रवाई में 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्रवाई नपीतुली और गैर उग्र प्रवृत्ति की रही, इसमें किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। मंत्रालय के अनुसार भारत ने लक्ष्यों के चुनाव और कार्रवाई की पद्धति में काफी रखा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये कार्रवाई पहलगांव में हुए निर्मम आतंकी हमले के जवाब में की गई है। इस आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल इस हमले के जिम्मेदार आतंकियों पर कार्रवाई करने में अपनी वचनबद्धता का पालन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने लगातार रात भर इस कार्रवाई पर नजर बनाए रखी।
इंडियन आर्मी हैज सेड दैट पाकिस्तान अगेन वायलेटेड द सीजफायर अग्रीमेंट by firing artillery in Bhimber Gully in Poonch Rajouri area. In a social media post, the Indian Army said that it is responding appropriately in a calibrated manner. In a video shared by several pro-Pakistan handles, it is being falsely claimed that the Pakistan Air Force has targeted Srinagar Air Base. The Press Information Bureau said the video shared is old and not from India. The video is from sectarian clashes that took place last year in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Social media post falsely claimed that Pakistan destroyed Indian Brigade headquarters. PIB said the claim is fake. PIB urged people to avoid sharing unverified information and rely only on official Government of India sources for authentic information.
पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय सशस्त्र बलों के हवाई हमलों के बाद देश के उत्तरी भाग में कई हवाई अड्डों को वाणिज्यिक संचालन के लिए बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में स्पाइस जेट ने कहा है कि धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर में हवाई अड्डों को अगले आदेश तक बंद किया गया है। इंडिगो ने भी अपने यात्रियों को इन हवाई अड्डों पर उड़ान की स्थिति का पता लगाते रहने का परामर्श दिया है। वहीं एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट की अपनी उड़ानें आज दोपहर 12 बजे तक के लिए रद्द कर दी हैं। अधिकतर वाणिज्यिक विमान सेवाओं में यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले उड़ान की स्थिति का पता लगाने की सलाह दी गई है।
The Indian Air Force will carry out a two-day mega military exercise in Rajasthan along the international border with Pakistan from today. The IAF has termed it a pre-planned routine training exercise that will involve all the frontline fighter jets, including Rafael, Sukhoi 30 and Jaguar aircraft. According to a notum or notice to airmen issued by the Airport Authority of India, the exercise is scheduled to begin at 3:30 p.m. today and will continue until 9:30 p.m. tomorrow, restricting airspace in the affected areas.
गृह मंत्रालय ने आज देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ली।
US President Donald Trump has reacted to Indian airstrikes hitting terror camps inside Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. Mr. Trump said people knew that something is going to happen. The US President further said that he hopes the tension between the two countries ends soon. Meanwhile, US Secretary of State Marco Rubio has said he is closely monitoring the situation between India and Pakistan. In a social media post, Mr. Rubio said that the US President will continue to engage both Indian and Pakistani leadership towards a peaceful resolution. Prime Minister Narendra Modi has said India's water will flow for India's benefit, it will be conserved for India's benefit, and it will be utilized for India's progress. Speaking at a private TV channel conclave in New Delhi yesterday, the Prime Minister underscored the past scenario where India's rightful share of water was flowing beyond its borders. He said now India's water will remain within the nation, serving its rightful purpose for the country's development. Talking about the significant work of interlinking of rivers undertaken by his government, the Prime Minister pointed out that for decades, river water was used as a reason for disputes between states. He cited key projects such as Ken Betwa Link Project and the Parvati Kalisindh Chambal Link Project, emphasizing that these initiatives will benefit millions of farmers by ensuring water accessibility.
पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा.
Lauding the free trade agreement between India and United Kingdom, the Prime Minister said this agreement will boost economic activities, will create opportunities for Indian business and MSMEs. The Prime Minister said India has signed trade agreements with UAE, Australia and Mauritius. He said India is actively engaged with the world.
और अनिता, अब आईपीएल क्रिकेट का समाचार. आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात वानखेड़े स्टेडियम में बारिश से बाधित मैच की आखिरी गेंद पर डकवर्थ लुईस नियम से मुंबई इंडियंस पर 4 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई, जबकि मुंबई इंडियंस चौथे स्थान पर खिसक गई. पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए. जवाब में गुजरात टाइटंस ने दो बार बारिश के व्यवधान के बाद 147 के संशोधित लक्ष्य का पीछा किया. कप्तान शुभमन गिल ने 46 गेंदों पर सर्वाधिक 43 रन बनाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया. आज कोलकाता के इंडियन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा. तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार. और अब हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के समाचारों की जानकारी दे रही हैं अनीता आनंद.
The enforcement directorate conducted searches at multiple locations across Chennai, linked to environmental consultants. Simultaneous searches took place in areas including Mylapore, Saidapet and Ashok Nagar. Separate teams guarded by CRPF personnel reached the targeted locations. The office of EHS 360 Labs Private Limited in Ashok Nagar, as well as the houses of Director Alank Nantanan of Alankar Infra Business Alliance and Ensys Technologies in Saidapet, Director Gunasekaran of Eco Care Engineering and S. Paramarippu Poriyel were also searched. The state's mangrove cover nearly doubled in 3 years, increasing from 4,500 hectares to nearly 90,000 hectares. A recent report on blue carbon monitoring for mangroves of Tamil Nadu conducted by Anna University for the Tamil Nadu government mapped the mangrove areas through physical visits and satellite imagery, highlighting before and after images. This will assist the government in promoting the growth of more mangroves. The study also identified Tiruvarur as a district with the largest mangrove area. The Bangalore Metropolitan Transport Corporation, BMTC, has responded to a recent video circulating on social media showing an elderly man allegedly misbehaving with a female passenger on BMTC bus. BMTC has taken cognizance of the incident and initiated action under the Nirbhay scheme for women's safety. The corporation has proactively implemented several safety measures under this scheme to safeguard women commuters on buses and at bus stops. All BMTC buses are equipped with panic buttons to enable women to quickly alert authorities in the event of harassment or other threats. A dedicated round-the-clock control room is operational to assist passengers in distress. The helpline number is 080-22483-777. This is displayed on the buses. Hyderabad is all set to participate in a nationwide civil defense mock drill later today as part of Operation Abhyas, aimed at enhancing preparedness against enemy attacks. Scheduled for 4 p.m. within the outer ring road limits, the drill will simulate an incoming air raid and test the readiness of civil defense services and the public. The mock drill will be conducted at four locations, Secunderabad and Golconda cantonments, Kanchanbagh and Nacharam. Additionally, mock drills at railway stations under the jurisdiction of the South Central Railway will be held at Kachiguda and Aurangabad stations. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Ravi.
धन्यवाद अनीता. शुरुआत दिल्ली से करते हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल मंगलापुरी में एक विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन किया. बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड बीआरपीएल द्वारा निर्मित ये अत्याधुनिक सब स्टेशन राजधानी की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को और अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाएगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि ये नया सब स्टेशन जीआईएस तकनीक से लैस है, जो पारंपरिक AIS प्रणाली की तुलना में 35% जमीन की बचत करता है. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किए गए मेगा स्वच्छता अभियान श्रमदान में कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने राजधानी के कैनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर के पास सफाई अभियान में श्रमदान किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 20 दिवसीय सफाई अभियान शुरू किया है, जिसमें NDMC, दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी तथा अधिकारी शामिल होकर श्रमदान कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है. राजधानी में मानसून से पहले बुनियादी संरचना को दुरुस्त करने और सड़क फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए कल दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें समयबद्ध कार्ययोजना पर चर्चा की गई. बैठक में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने स्पष्ट किया कि शहर की सड़कों को बेहतर बनाने का अभियान तभी सफल होगा जब सभी संबंधित एजेंसियां, जिला प्रशासन, दिल्ली पुलिस, नगर निगम और अन्य निकाय एकजुट होकर समन्वय के साथ काम करेंगी. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं और नारी शक्ति जब आगे बढ़ती है तो पूरा समाज सशक्त बनता है, विकास की ऊंचाइयों को छूता है. श्री गुप्ता ने यह बात कल माता सुंदरी कॉलेज ऑफ वीमेन के 58वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए कही. श्री गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 1967 में शुरू हुआ यह कॉलेज आज एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है. उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि छात्र अपने शैक्षणिक और व्यक्तिगत जीवन की यात्रा को विवेकपूर्ण सोच, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ प्रारंभ करें. राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा राजधानी में आयोजित महिला महाजन सुनवाई के दूसरे दिन कल अध्यक्षा विजया रहाटकर ने महिलाओं की शिकायतों को सुना. इस दौरान उन्होंने समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए. NCW द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार महिला महाजन सुनवाई का उद्देश्य महिलाओं को उनके अपने शहर में ही उनकी समस्याओं का समाधान देना है. आगे बढ़ते हैं, चलते हैं महाराष्ट्र, मुंबई की ओर. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के 150 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की है. कल पत्रकारों से बात करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि इस कार्यक्रम का तीन गुना उद्देश्य 2047 तक पूर्ण विकसित महाराष्ट्र के लिए रोडमैप तैयार करना, सेवाओं की डिलीवरी के मामले में 100% ई गवर्नेंस और सेवा संबंधी प्रशासनिक सुधार करना होगा. 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम का विवरण आज तब सामने आएगा जब सरकार राज्य सरकार के 100 दिवसीय कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरकारी अधिकारियों को सम्मानित करेगी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में कई पहलों की घोषणा की है। अहिल्यानगर में कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने घोषणा की कि राज्य सरकार लड़कियों के लिए विशेष रूप से एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई स्थापित करेगी ताकि उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल प्रदान किया जा सके। शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि सरकार पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर छात्रावास योजना के अंतर्गत नवी मुंबई, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नाशिक, नागपुर, अमरावती में मेधावी धनगर छात्रों के लिए छात्रावास बनाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल में आज ग्रेटर कोलकाता समेत 31 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस छात्र और आम नागरिक शामिल होंगे। कल मंगलवार को गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत, पश्चिम बंगाल सरकार की गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, नागरिक सुरक्षा महानिदेशक जगमोहन और आपदा प्रतिक्रिया बल विभाग के सचिव राजेश सिन्हा के साथ मॉक ड्रिल की तैयारी पर बैठक की। प्रतिभागियों को हवाई हमले की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करनी है इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें सायरन और ब्लैकआउट की स्थिति पर प्रतिक्रिया भी शामिल है। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। AIRFM गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और अनीता के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप पर बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और बारिश के साथ आंधी की भी संभावना है। तापमान 28 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी आमतौर पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा मध्यम वर्षा या गरज के साथ तूफान की भी संभावना है। तापमान 24 और 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अनीता,
Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 28 degrees and the maximum will be 38 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky with possibility of development of thunder and lightning. The minimum temperature was 21 degrees and the maximum will be 33 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius.
और अनीता, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अपने श्रोताओं को ये बताएं कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ, हम बताना चाहेंगे कि आज सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस है जो प्रत्येक वर्ष भारत में 7 मई को मनाया जाता है।
जी, this was established in 1960 with just two projects, Project Tusker, now Vartak, in the east and Project Beacon in North India. BRO has evolved into a dynamic entity. It is recognized as the leading infrastructure construction agency in high altitude and snowbound regions. The BRO is an Indian executive force under the Ministry of Defense tasked with securing India's borders and developing infrastructure in remote areas of the northern and northeastern states. Operating under the BRO, BRDB, it is responsible for managing road networks in border areas and neighboring countries. The BRO's motto, Shramen Sarvam Sadhyam, translates into everything is achievable through hard work.
Aur Anita, aaj hi ke din, aaj hi jo hai Vishwa Athletic Divas bhi hai, jo pratek varsh 7 mai ko hi manaya jata hai.
Ji, bilkul. And this is about raising awareness about the benefits of healthy lifestyle through sports. Founded by the International Amateur Athletics Federation, IAAF, now known as World Athletics, the day seeks to foster a strong sporting culture across nations, particularly among young people. Celebrated globally, World Athletics Day emphasizes the values of sportsmanship, discipline, and an active lifestyle, with schools and communities hosting events to engage students in the spirit of athletics. And Ravi, regular exercise has shown to significantly improve our mental and emotional health, right?
Ji, bilkul.
While reducing incidence of mental illness also, exercise also helps combat anxiety and depression, with outdoor activities boosting vitamin D levels and our mood. Additionally, as one's fitness improves, self-esteem improves, leading to increased confidence and productivity. Finally, moderate aerobic exercise promotes better sleep by increasing slow-wave sleep, which allows the brain and body to fully relax एंड ऑल्सो रिजुवनेट।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। तो 1976 में आज ही के दिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को अपने आविष्कार का पेटेंट मिला, जिसे उन्होंने टेलीफोन यानी कि दूरभाष का नाम दिया।
गोइंग बैक अ लिटिल, इन 1663 द थिएटर रॉयल, नाउ कॉमनली नोन एज द ड्रॉरी लेन थिएटर, ओपन्ड इन लंदन ऑन दिस डे एंड इज द ओल्डेस्ट इंग्लिश थिएटर स्टिल इन यूज। In 1907, the first electric tramway service commenced in Bombay, that is Mumbai. In 1946, Sony Corporation, a major Japanese manufacturer of consumer electronics products, was founded by Ibuka, Masaru and Morita Akio. In 1973, the foundation stone was laid of Itanagar, the new capital of Arunachal Pradesh.
1999 में आज के दिन स्कॉटलैंड संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी को सफलता मिली। और सन 2000 में व्लादिमीर पुतिन ने रूस के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। और सन 2001 में आज के दिन पूर्वोत्तर ईरान में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई। और सन 2000 में आज ही के दिन नेपाल के प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा ने इस्तीफा दिया।
Yes, and now it's time to remember people born on this day or passed away today.
जी बिल्कुल। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वीर क्रांतिकारी शहीदों में से एक रहे अल्लूरी सीताराम राजू का, जिनका जन्म हुआ था 15 मई 1897 विशाखापट्टनम में और शहादत हुई 7 मई 1924 को। अनीता, उन्हें औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिल पाई थी। अपने एक संबंधी के संपर्क से वे अध्यात्म की ओर आकृष्ट हुए और 18 वर्ष की उम्र में ही वे साधु बन गए। सन 1920 में अल्लूरी सीताराम पर महात्मा गांधी के विचारों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा और उन्होंने आदिवासियों को मद्यपान छोड़ने तथा अपने विवाद पंचायतों में हल करने की सलाह दी। लेकिन जब वे एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का गांधी जी का स्वप्न साकार नहीं हुआ तो सीताराम राजू ने अपने अनुयायी आदिवासियों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के प्रयत्न आरंभ कर दिए। और सीताराम राजू ने लोगों के मन से अंग्रेज शासन के डर को निकाल फेंका और उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने को प्रेरित किया।
Today is the death anniversary of the Italian composer and teacher of classical period. We are talking about Antonio Salieri. He passed away on this day in 1825. Salieri was a pivotal figure in the development of late 18th century opera as a student of Florian Leopold Gassmann, a protege of Christoph Willibald Gluck. Salieri was a cosmopolitan composer who wrote operas in three languages. Salieri helped to develop and shape many of the features of operatic compositional vocabulary, and his music was a powerful influence on contemporary composers. I am playing a snippet from his opera Amadeus. Till 1804, he still remained one of the most important and sought-after teachers of his generation, and his influence was felt in every aspect of Vienna's musical life. Franz Liszt, Franz Schubert, Ludwig von Beethoven, Anton Eberl, Johann Hummel and Franz Xaver Wolfgang Mozart were among the most famous of his pupils. His music slowly disappeared from the repertoire between 1800 and 68 and was rarely heard after that period until the revival of his fame in the late 20th century. This revival was due to fictionalized depiction of Salieri's Peter Schaffer's play Amadeus in 1979 and also in 1984 film version.
और पुण्यतिथियों में अब जानकारी हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार रहे प्रेम धवन के बारे में, जिनका जन्म हुआ 13 जून 1923 को और जिन्होंने इस संसार से विदा ली 7 मई 2001 को। अनीता, प्रेम धवन ने हिंदी फिल्मों के लिए कई मशहूर गीत लिखे। प्रेम धवन न केवल गीतकार थे बल्कि इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया, नृत्य निर्देशन भी किया और यहां तक कि अभिनय भी किया। प्रेम धवन ने पंडित रविशंकर से संगीत एवं पंडित उदय शंकर से नृत्य की शिक्षा ली और भारत सरकार ने प्रेम धवन को 1970 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया। और अनीता, इनके बारे में एक रोचक जानकारी यह है कि मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी इनके सहपाठी थे, यानी कि क्लास फेलो थे, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल इनके सीनियर थे। तो लगे हाथों प्रेम धवन द्वारा रचित बहुत ही बढ़िया से एक गीतों की एक मेडली है हमारे पास, वो अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं।
मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला।
Today is the birth anniversary of Rabindranath Tagore, a Bengali polymath who worked as poet, writer, playwright, composer, philosopher, social reformer, and the painter of Bengal Renaissance. He reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with contextual modernism in the late 19th and the early 20th centuries. He was the author of the profoundly sensitive, fresh and beautiful poetry of Gitanjali. In the year 1913, Tagore became the first non-European to win a Nobel Prize in any category and also the first lyricist to win the Nobel Prize in literature, referred to as the Bard of Bengal. Tagore was also known by the sobriquets of Gurudev, Kobi Guru and Biswo Kobi.
Aur Anita, ab जिक्र कर लेते हैं भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया के बारे में, जिनकी आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म हुआ था 31 मई 1927 को और निधन हुआ 7 मई 2021 को। उन्होंने तमस, अंकुर, मंथन, मंडी, जुनून, कलयुग और अजूबा जैसी फिल्मों में संगीत दिया। वनराज भाटिया को 1988 में गोविंद निहलानी की फिल्म तमस में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और 2012 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 60 के दशक में कई मशहूर एडवर्टाइजिंग फिल्मों का संगीत देते हुए अपने संगीतमय करियर की शुरुआत की और साल 1974 में रिलीज हुई श्याम बेनेगल निर्देशित फिल्म अंकुर बतौर संगीतकार वनराज भाटिया की पहली फिल्म थी।
टुडे इज आल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द अमेरिकन ब्रिटिश एनिमेटर एंड स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएटर हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ बोथ फील्ड्स। इन अ करियर स्पैनिंग 40 इयर्स ही बिल्ट upon the techniques of mentor Willis H. O'Brien to develop a form of stop-motion model animation known as Dynamation and advance the field of cinematic special effects. Though not credited as a writer or director on any of the feature films, he worked on the role he played in shaping those he made during his peak years and has led him to become being regarded as cinema's sole visual effects author, and I'm playing a snippet from one of his films, The Golden Voyage of Sinbad.
I won't be denied. I won't be Kuras!
We meet again.
Today is also the birth anniversary of the English poet and playwright Robert Browning, born on this day in 1812, whose dramatic monologues put him high among the Victorian poets. He was noted for irony, characterization, dark humor, social commentary, historical settings, as well as challenging vocabulary and syntax. His early long poems, Pauline and Paracelsus, were acclaimed, but his reputation dwindled for a time in 1840 poem Sordello, and was seen willfully obscure, and took over a decade to recover, by which time he had moved from Shelleyan forms to more personal style.
और अब समय हो गया अनीता अपने श्रोताओं से विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आज का विचार कि जिसका सब्र जितना लंबा होता है उसे उसका फल भी उतना ही मीठा मिलता है. इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और अनीता आनंद को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की. नमस्कार.